तो सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। और अभी नया अध्याय शुरू हुआ है, इसी छठे स्कंध का 19वां अध्याय। इसमें जो हम लोग 5वां श्लोक आज ले रहे, बोर्ड पर लिखा है, आप हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिम ओजसा जुष्ट ईशा गुणे सर्वे तत् असि भगवान् प्रभु। यथा त्वं कृपया भूत्वा तेजसा महिमोजसा जुष्ट ईशा गुणे सर्वे ततोसि भगवान् प्रभु। यथा त्वं कृपया भूत्वा तेजसा महिमोजसा जुष्टः ईशा गुणे सर्वे ततोसि भगवान् प्रभु। यथा त्वं कृपया भूत्वा तेजसा महिमोजसा जुष्ट ईशा गुणे सर्वे तत्वोसि भगवान् प्रभु। धन्यवाद आप सबका। हमारे पीछे शब्दार्थ दोहराइए। यथा जिस प्रकार त्वं तुम कृपया कृपा से भूत्या ऐश्वर्य से तेजसा तेज से महिमोजसा महिमा तथा बल से जुष्टा युक्त ईशा हे ईश्वर गुणे दिव्य गुणों से सर्वे समस्त तथा अतः असि हो भगवान श्री भगवान प्रभु स्वामी। अनुवाद इस प्रकार है, हे भगवान, आपका अहेतुक आप अहेतुक की कृपा समस्त ऐश्वर्य समस्त तेज तथा समस्त महिमा बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण हर एक के स्वामी श्री भगवान हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में आगत ततोसि भगवान प्रभु शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, अतः आप प्रत्येक के स्वामी श्री भगवान हैं। श्री भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के साथ साथ अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। यद्यपि वे पूर्ण हैं किंतु फिर भी वे चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं उनकी शरण में आकर उनकी सेवा करें। इस प्रकार से वे प्रसन्न होते हैं। यद्यपि वे स्वयं में पूर्ण हैं तो भी अपने भक्तों द्वारा पत्र पुष्प फल तोयम अर्पित किए जाने पर प्रसन्न होते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्त से भोजन मांगते हैं, जिस प्रकार माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण। कभी कभी वे अपने भक्तों को स्वप्न में बता देते हैं कि उनका मंदिर तथा उनका बगीचा अब जीर्ण हो चुके हैं, जिससे वे उनका उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार वे भक्तों से उनकी मरम्मत के लिए कहते हैं। कभी कभी वे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए जाने पर स्वयं भगवान बाहर आने में असमर्थ बताकर अपने भक्तों से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। कभी कभी अपने भक्तों से पूरे विश्व में घूमकर अपने यश का उपदेश देने के लिए कहते हैं। यद्यपि वे अकेले इस कार्य को करने में सक्षम हैं, यद्यपि श्री भगवान सभी धन धान्य से संपन्न और आत्मनिर्भर हैं, किंतु तो भी वे अपने भक्तों पर आश्रित रहते हैं। अतः भगवान तथा उनके भक्तों का संबंध अत्यंत गुप्त है। केवल भक्त ही जान पाते हैं कि संपूर्ण होकर भी भगवान किस प्रकार भक्तों पर आश्रित रहते हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता के 11वें अध्याय के 33 श्लोक में की गई है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, हे अर्जुन तुम केवल युद्ध के निमित्त मतलब कारण बनो। यद्यपि श्री कृष्ण अकेले कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत सकने की क्षमता रखते थे, किंतु तो भी उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और जीत का कारण बनने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नाम तथा संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करने में पूर्ण सक्षम थे, किंतु फिर भी इसके लिए वे अपने भक्तों पर निर्भर रहे। इन सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अपने भक्तों पर निर्भर हैं, यही उनकी अहेतु की कृपा है। जिस भक्त ने भगवान की इस अहेतु की कृपा को अनुभव देखा है, वही स्वामी तथा दास को समझ सकता है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों एक बार फिर से हम श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद से हम लोग 19वें अध्याय के अब जो हैं उसमें चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। ये वो व्रत है जिसको हम लोगों ने इससे पिछले अध्याय में सुना कि किस प्रकार जो है दीती को कहा गया कि इस व्रत का पालन करें जिससे कि वो अपनी मनवांछित इच्छा को पूरा कर सके। क्या थी उनकी इच्छा? कि वो चाहते थे कि इंद्र जो कि कारण बना था या जिनकी वजह से दीती के पहले दो पुत्र मारे गए थे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, उसका बदला पूरा हो सके। इसलिए वो चाहते थे कि अब जो मेरी संतान हो वो इंद्र का वध करे। तो काफ़ी चीज़ें बताई थी उनके हस्बैंड ने कि भाई आप इस चीज़ का पालन करो तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा आपका। तो लगभग 1 साल का कोर्स था पूरा इस रिचुअल का, इस अनुष्ठान का, इस व्रत का, और बहुत सारी सावधानी डूज और डोंट्स भी बताए करने के लिए, और कहा कि कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन चूक हो गई थी। क्या चूक थी? वो कि संध्या के समय खाने के बाद बिना हाथ पांव मुंह धोए संध्या के समय ही सो गई, और उस समय इंद्र जो है उनके गर्भ में प्रवेश कर उनके गर्भ को नष्ट किया 49 भागों में, और 49 मरुत बन गए, और उन्होंने कहा कि हम भाई हैं, आप हमें क्यों मार रहे हैं। और इंद्र को क्या आ गई? दया आ गई। ऐसे भी कुछ समय पहले दिल्ली में कुछ घटना घटी थी, तो किसी स्वामी जी ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई ऐसी घटना में फंस गया तो उसको बोलना चाहिए था कि आप भाई हो। लेकिन यहाँ तो जिन लोगों की बात हो रही है वो बहुत एलिवेटेड डिवोटीज हैं स्वर्ग के, है ना। और इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत में तो हर व्यक्ति काम क्रोध लोभ से बहुत ज़्यादा बुरी तरह ग्रस्त है, और तो काफ़ी आलोचना वगैरह हुई थी इनकी स्टेटमेंट की। पर ठीक है, हम लोग तो अभी इंद्र की बात कर रहे हैं। तो इंद्र जो हैं वो उसके जो दुश्मन पैदा होने थे वो सारे मित्र बन गए, है ना। अभी सुखदेव गोस्वामी महाराज हमें बता रहे हैं कि वो कौन सा व्रत था और किस प्रकार उसका जप करना था और क्या उसके विधि विधान थे। तो चाह रहे हैं कि सभी स्त्रियां, उनको चाहिए कि किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए तो, और क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, तो उस विषय में बताया जा रहा है। तो शुरुआत में महाराज परीक्षित ने कहा, हे स्वामी आप पुंसवन व्रत के संबंध में पहले ही बता चुके हैं, अब मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, स्त्री को चाहिए कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, को अपने पति की आज्ञा से इस नैमित्तिक भक्ति को तप के व्रत सहित प्रारंभ करे, क्योंकि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मरुतों के जन्म की कथा को सुने, ब्राह्मणों की आज्ञा से वह प्रातःकाल अपने दांत साफ करे, नहावे, श्वेत साड़ी पहने और अलंकार धारण करे, और फिर कलेवा करने के लिए से पहले भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करें। और कल के श्लोक में बताया, तब वह भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, किंतु मुझे ऐश्वर्य की कामना नहीं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूं। आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति हैं जो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आप समस्त योग के स्वामी हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूं। तो ये कल तक बताया था। अभी इसमें अनुवाद में आ रहा है कि जो स्त्री प्रार्थना करेगी वो ये भी बोल रही है कि मुझे किसी प्रकार के ऐश्वर्य की कामना नहीं है। तो इधर ही फेल हो जाएंगे अगर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो कामनाओं के साथ ही करेंगे और हमारी कामनाएं बहुत होती हैं और उन सब कामनाओं को के चलते ये सब व्रत रखने की बात कही जा रही है, तो बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार योग में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग करना चाहता है, वो जो पार्कों वाला योग होता वो वाला नहीं, वास्तव में योग की विधि का ढंग से पालन करना चाहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो कहते हैं पहले उस योगी को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को वश में करे, मन को कंट्रोल में करे, और उसके बाद जो है एक ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर कि वो योग कर सके। लेकिन जिस प्रकार का हम योग करते हैं, जो ज़्यादातर लोग पार्कों में करते हैं, तो वो योग केवल शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कह सकते हैं कि होता है, प्रयास किया जाता है ताकि उम्र अधिक रहे। लेकिन यहाँ पर उस योग से वो मतलब नहीं कि जो व्यक्ति भगवत धाम जाने का प्रयास करे या हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करे, क्योंकि वैसे भी ये जो विधि थी ये सतयुग की विधि थी, ये धनयुग की विधि नहीं है, मतलब कलयुग की विधि नहीं है, तो इस युग में नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर आज के श्लोक में बता रहे हैं कि क्या और बोलें भगवान को। तो आज फिर प्रार्थना का वो है कि हे भगवान, आप अहेतु की कृपा, समस्त ऐश्वर्य, समस्त तेज तथा समस्त महिमा, बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण हर एक के स्वामी श्री भगवान हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो श्लोक है, इस प्रकार की स्तुति करनी चाहिए भगवान की। जनरली हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी ने देवताओं ने भगवान के पास जाकर कुछ भी मांगा है तो सबसे पहले भगवान की स्तुति की है। तो भगवान की, भगवान को एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोकों से क्योंकि भगवान की स्तुति की जाती है, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोकों से भगवान की प्रार्थना की जाती है। समस्त देवताओं ने जब जब की और भगवान की भगवत्ता को रखा कि आप क्या हैं, किस प्रकार ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, किस प्रकार आपने इन रसों का वध किया, किस प्रकार सृष्टि चला रहे हैं, किस प्रकार आप हर एक के हृदय में हैं, सभी जो हैं देवता आपके अंडर में हैं, हर कुछ इस प्रकार जो स्तुतियां करने के बाद भगवान को प्रसन्न करते हैं और उसके बाद अपनी डिमांड रखते हैं। उसी तरह इस व्रत को करने से पहले भी बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान की स्तुति करनी है। और जब हम कभी भी मंदिर आएँ और जब हम लोग अपनी डिमांड लिस्ट रखना चाहें भगवान के आगे, क्योंकि लोग रखते हैं अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार, हर तरह का व्यक्ति भगवान की शरण में आता है। तो अगर काम है, मतलब इच्छाएं हैं और इच्छाएं नहीं भी हैं, तो भगवान की शरण में आता है। लेकिन फिर भी कैसे रखनी चाहिए, पहली बात तो दर्शन का भी तरीका बताते हैं भागवतम में कि कैसे दर्शन करना चाहिए, कैसे भगवान के एक एक अंग का ध्यानपूर्वक दर्शन करें और उसके बाद उनकी स्तुति करें। चरणों से जो है भगवान का दर्शन आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे, क्योंकि एक एक अंग का महत्व है भगवान के। जैसे ही हम उन जगहों पर दृष्टिपात करते हैं, उन जगहों पर दृष्टि अपनी लगाते हैं, तो उन अंगों से जो उसका महत्व है वो धीरे धीरे वो हमारे जो है जैसे कई जैसे चरण है भगवान के, और भगवान के चरणों में ही, चरणों के नीचे एक तरफ 8 और पैर एक तरफ पैर में और दूसरी तरफ 11 चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। और ये चिन्ह वृंदावन में देखे जा सकते थे जब भगवान वृंदावन में गोचर लीला करते थे, है ना। तो पूरे वृंदावन में अगर भगवान को कहीं ढूंढना है किसी को, तो जमीन पर क्या देखते थे, भगवान के चरणों के चिन्ह को देखते थे और पता लगाते थे कृष्ण कहाँ गए। और बताया जाता है कि उन चरणों पे पैर भी नहीं रखता था कोई, है ना, क्योंकि मेरे पैर ना जाए भगवान के चरणों पर। तो भगवान के चरणों में ही कई प्रकार के जो चिन्ह हैं, अगर आप एक किताब मिलती है बीबीटी शॉप से, उसका नाम है आर्ट ऑफ चैंटिंग। तो उसमें भगवान के चरणों के साइन दिए हैं और एक एक साइन का मतलब भी बताया है, और वो मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो किस प्रकार भगवान के चरणों पे जो है शंख का चित्र है, है ना, और कई फूल अंकित हैं, वज्र अंकित है, चंद्रमा अंकित है, और त्रिभुज इत्यादि बने हैं, कलश पड़े हैं इन सब, और धनुष है, गोखुर बने हैं, है ना। तो इन सब चित्रों का, इन सब चिन्हों का बहुत फायदा है कि जब एक एक चिन्ह जो है हमारे लिए मंगलकारी है, भगवान जो है भक्तों को कष्टों को दूर कर देते हैं जब वो उन चिन्हों पर ध्यान लगाते हैं, या उन चिन्हों पर ध्यान लगाते हैं भगवान की स्तुति करते हैं। तो चरणों से ही जब व्यक्ति दर्शन करने का प्रयास करता है, हम लोग जो जिन चरणों का दर्शन करते हैं भगवान का, जो योगी जन है ना, वो पूरा जीवन लगाते हैं भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए, उनके नाखून के अग्रभाग पर पूरा जीवन जो है ध्यान लगाते हैं। लेकिन अगर भक्त यहां पर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है, तो जो परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं हृदय में, और उनके चरण कमलों के पर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो यहां पर चरण कमलों को देखा जा रहा है, तो वास्तव में समान ही है। और जो बड़े बड़े योगी भी जिन चरण कमलों को का दर्शन करना चाहते हैं, वो मंदिर में आने वाले भक्तों को बहुत आसानी से उपलब्ध है। हो सकता है ये पिछले जन्म में योगी रहे हों, इतना आसान थोड़ी भगवान के चरण कमलों को, नहीं तो किसी योगी को जाके पर्वत पे जाकर बोला हो कान में, अरे भैया तुम जिनका ध्यान लगा रहे हो इसको मंदिर में जाके दर्शन कर लो। मानेगा नहीं, वो कहेगा भैया मैं तो इस लेवल पे पहुंच गया, मेरे प्राण यहां से यहां तक आ चुके हैं, अब क्यों वापस जाऊं, है ना। तो वो व्यक्ति कभी खूब ध्यान लगाएगा और वो ध्यान लगाने का प्रयास करेगा, और उसके बाद कहीं वेद पढ़े, सब कुछ किया और मृत्यु हो गई बीच में, मान लीजिए भ्रष्ट योगी था, भ्रष्ट मतलब उस तरह का भ्रष्ट नहीं जैसे समाज में भ्रष्ट है, भ्रष्ट का मतलब है कि मतलब अपनी पूरी स्थिति को पूरा नहीं कर पाया, और उसका फिर दोबारा जन्म हुआ शुचिनाम श्रीमताम गेह, कुछ शुद्ध परिवार में, ब्राह्मणों के परिवार में, धनी परिवारों में, और अब वो फिर इस योग्य हुआ है कि अपनी जिह्वा से वो भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है। ये नाम भगवान के जो जिह्वा पे आते हैं, ये भी आसान नहीं है किसी की जिह्वा पे आ जाए, इसके लिए भी भगवान मतलब शास्त्रों में लिखा गया कि किसी व्यक्ति ने अगर सारी विश्व की नदियों में स्नान किया है, तीर्थ स्थलों की नदियों की बात हो रही विशेषकर, और तीर्थ स्थलों में स्नान किया है, सारे वेदों का वो अध्ययन कर चुका है, हर प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कर चुका है, राजसूय यज्ञ इत्यादि कर चुका है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अगले जन्म में इस योग्य बनता है कि वो भगवान के पवित्र नामों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 अपनी जीवा पर ला सकता है। तो अब अभी सब सोच सकते हैं आपके, आप लोगों ने ये सब पिछले जन्म में क्या होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो हमने करवा दिया, ठीक है। तो भगवान का नाम जीवा पर आना या भगवान का दर्शन करना, ये सभी मंगलकारी है किसी भी जीव के लिए, और ये इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध इसलिए आसानी से नहीं है क्योंकि हमको लगता है कि अरे ये भी तो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये साथ में बैठा है ये भी कर रहा है, अरे ये तो बहुत निर्धन है ये भी कर रहा है, अरे ये तो बहुत धनी है ये भी कर रहा है, इतना मुश्किल थोड़ी है, तो कोई भी कर सकता है। नहीं, अगर हम लोग भागवत की दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं, गिन नहीं सकते, असंख्य जीवात्माएं हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जिनको शरीर ही नहीं प्राप्त हुआ, और कुछ को प्राप्त है तो बैक्टीरिया जैसे हैं कि जो कि आप गिन ही नहीं सकते, एक एक स्क्वायर फीट के एरिया में कितने बैक्टीरिया हैं ये भी बड़ा मुश्किल है गिनना, और पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से भरा हुआ है हर जगह से। और फिर ऐसे सूक्ष्म जीवात्माएं जिन्हें शरीर मिला है लेकिन वो जीवात्मा दिखती नहीं है, और फिर बताया जाता है कि घास वृक्ष पौधों के रूप में, पहाड़ों के रूप में कई ऐसे जीवात्मा हैं जो बस पड़े हैं ऐसे हिल भी नहीं सकते। फिर कुछ ऐसी जीवात्माएं हैं जिनको पशु योनि प्राप्त हुई है, जैसे 84 लाख योनि हम बताते हैं, इतनी सारी जीवात्माओं के मध्य में फिर जो 7 अरब जीवात्माएं वो हैं जिन्हें वो देह मिल गई जिससे कि वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, या अपने जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्र को सदैव रोक सकते हैं सदैव के लिए, उसमें से भी कितने कर रहे हैं? बहुत कम। तो इसलिए बताया गया मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ होती है, और ये मनुष्य उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जो शास्त्र के हिसाब से जिन्हें मनुष्य कहा गया है, और उनमें से कुछ मनुष्य, अधिकतर मनुष्य उसमें से भी जो थोड़े से रिलीजियस हैं, उन 7 अरब में भी कुछ ऐसे हैं जो कि भगवान को, जैसे बताया श्रीमद् भागवतम के द्वारा कि 3 प्रकार से भक्ति की जा सकती है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द ते, 3 तरह से जाना जा सकता भगवान। तो इसमें जो ब्रह्मवेति हैं अर्थात निराकारवादी हैं, ज्योति स्वरूप जो भगवान को पूछते हैं, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ठीक हैं और बाकी सब गलत है, और वो अपने ही मार्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानते हैं। उन्हें लगता है कि हम ठीक हैं दूसरे गलत हैं। जिस प्रकार एक बार एक श्रीमान को लगा कि उसकी पत्नी ऊंचा सुनती है, तो डॉक्टर के पास गया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो उसने इनको बताया कि कितना कान खराब है, ये कैसे जाने कि आप जो हैं, एक विधि बताइए उसको कि ऐसे पहले 50 फीट की दूरी से इनको आवाज़ मारना, फिर 40 फीट की दूरी से मारना, फिर 30 की मारना, फिर 20 की मारना, फिर पा सको तो पता चल जाएगा कि कैसी मशीन चाहिए उनको। तो उसने ऐसे ही किया डॉक्टर से पूछकर, पहले घर में घुसने से पहले बरामदे से जो है उसने आवाज मारी, फिर कोई जवाब नहीं आया तो फिर वो और आगे गया, फिर 40 फीट की दूरी से मारी, फिर 30 फीट की दूरी से मारी, उसको लगता बड़े कान खराब हैं, फिर 20 फीट की दूरी से मारी, तो देखा तो देख भी रही हैं, फिर 20, फिर 10 फीट की दूरी से मारी, कोई जवाब ही नहीं, कहते तो पूरे कान खराब हैं इनके। फिर एकदम बिल्कुल करीब आके बोला, अजी सुनती हो? कहती 5 बार बोल चुकी हूँ तुम्हें कि हाँ क्या काम है बोलो, अभी तक नहीं बोल रहे तुम। चौक गया, कहता तो मेरे कान खराब है। तो जिस प्रकार ये लोग हैं जो ब्रह्मवादी हैं, जो सोचते हैं कि हम ठीक हैं और उन लोगों को गलत बताते हैं जो सही मार्ग पर है, तो उनकी स्थिति ऐसी है। उन्हें लगता है कि ये जो कर रहे हैं ना, ये जो रिचुअल कर रहे हैं, जो मंदिर आ रहे हैं और पूजा इत्यादि करते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं, इससे बढ़िया तो निराकार पर ध्यान लगाओ। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि निराकार पर तो ध्यान कैसे लगाएं, किस चीज पर लगाएं, आकार तो होना चाहिए। जैसे एक बार 2 भूत बात कर रहे थे आपस में पेड़ के ऊपर, कहते हैं ये तो आदमी उदमी पे विश्वास करते हैं, कहते पता नहीं है कि नहीं। अभी वो आदमी पे विश्वास नहीं कर रहा जिसका फॉर्म है, जो बात करता है, खाता है, पीता है, उस पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि खुद निराकार टाइप के व्यक्ति हैं। तो निराकार पर ध्यान लगाने की बात देखिए कितनी अजीब है, तो फिर भी लोग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शायद सफलता मिल जाए। तो इस प्रकार भगवान इति शब्द थे। तो कई लोग फिर सब कुछ कहते नहीं, नहीं फिर जो रूप भी है तो वो फिर निराकार से ही आया है। और कई बार भजन भी होते हैं लोगों के जो हम लोग थोड़े से चेंज किए, एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, बाकी सब दाकार लेकिन तू है निराकार। मतलब भाई जिसने सबको बनाया वो बस फॉर्मलेस है, वो खुद को फॉर्म देना भूल गया ताकि लोग मेरे पे ध्यान करते कैसे करें। तो ठीक है, जो लोग जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतना ही काम करेगा, जो जितना सोच सकता है जहाँ तक कर सकता है उतना ही करता है। जैसे एक महिला थी, वो दूध नापती थी, तो एक बार कपड़ा लेने गई तो कपड़े वाले को कहती भाई साहब कुछ कपड़ा दे दो, तो मीटर से नापने लगा, कहती मीटर से नहीं लोटे से नाप। कहते लोटे से नहीं मीटर से नापा जाता है। कहते कमाल कर रहे, मैंने कितने लीटर दूध नाप दिया इससे, तुम थोड़ा सा कपड़ा नहीं नापा जा रहा। तो कहने का मतलब जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी बात करेगा। तो जिसके जितने संस्कार हैं, जितने पुण्य हैं, जितने उसने जितनी भक्ति करी है या जितना संग किया, वो उतना ही सोच सकता है, उससे अधिक नहीं सोच सकता। जितना मर्जी समझाओ, कितने प्रयास कर लो, वो उतना ही समझे। इनमें अगर कहीं किसी के ऊपर शुद्ध भक्ति कृपा हो जाए, अहेतु की कृपा हो जाए भगवान की, जो पहला शब्द है कि आप अहेतु की कृपा के आधार, वो लोग जो है उस लेवल से उठकर आगे आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है जो निराकारवादी हैं उनको समझ नहीं आती ये बातें, जो परमात्मावादी हैं, जो योग कर रहे हैं, जो पर्वतों में बैठे हैं, जो काफी समय से बाहर नहीं निकले, 300-400 साल हो गए, तो उन्हें लगता है कि हमारे को तो रिजल्ट भी दिख रहे हैं, है ना। जैसे लोग जल्दी मर जाते हैं, हम तो नहीं मरे, 300-400 साल हो गए, तो हवा में बैठ जाते हैं लोग, अपने आप को ऐसे उठा लेते हैं ऊपर, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुना था ना एक बार कि एक व्यक्ति ने पैदल चलकर नदी पार कर ली, एक बार हमने भी की थी यमुना पार, तब पानी बड़ा कम था, तो लेकिन जिस नदी में पानी ऊपर है तो उसने उस नदी को चलकर पार किया, मतलब पानी में चलकर दिखाया। तो भक्तों ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, चमत्कार को नमस्कार। तो हमारे भारत में अधिकतर लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, कुछ चमत्कार दिखा दो तो लोग आपकी जय जय करने लगेंगे, पूजने लग जाएंगे। एक बार हमने इसी व्यास संस्थान से एक आईपॉड गायब करके दिखाया था तो व्यक्ति ने ताली बजाई, वो तो शागिर्द हो गया था मतलब। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा चमत्कार आप दिखा दीजिए तो लोग जो है आपके फैन हो जाते हैं। हर व्यक्ति थोड़ा सा, जो थोड़ा सा डिफरेंट है सब उसकी जय कर रहे हैं। हर व्यक्ति इसलिए डिफरेंट दिखना चाहता है, हेयर स्टाइल सबका एक जैसे तो फायदा क्या, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो फिर लोग जो है अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं, फिर उसको अलग अलग प्रकार से कलर करते हैं, पता नहीं चलता इसने मुर्गा सर पर बिठा रखा है या सच के बाल है। देखिए क्यों अलग दिखना चाहते हैं, क्यों जय जयकार करते हैं, क्योंकि भीड़ में अलग देखा गया, उसके दोस्त बनेंगे लोग, उसकी जय जयकार करेंगे, इसीलिए पूरा समाज जो है जो थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा दे उसकी फॉलोशिप ज्यादा है। और पूरे समाज में बताते हैं प्रभुपाद जी कि थोड़ा सा भी अगर कुछ यज्ञ तप कुछ कर ले तो सिद्धियां तो वैसे प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस मार्ग में हम लोग हैं इसमें सिद्धियां नहीं है, इसमें भी अपार सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के वो सब मिलती है, लेकिन भक्त लोग ये सब चाहते नहीं। वैसे सब चाहते हैं, बात अलग है, क्योंकि उनको लगता है कि शुरू में मिल जाती तो दिक्कत क्या थी, नहीं थोड़ी सी सिद्धियां मिली जाती तो चला लेते एक बार, इसलिए भगवान देते भी नहीं। उनको मालूम है एक माता पिता जिस प्रकार अपने बच्चे के लिए उसका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो है सही चले, सही दिशा में जाए, आगे बढ़े, और वो सब चीजें उसके आगे से दूर कर देते हैं जो वो लेना चाहता है उस समय। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको माता सदैव अपने पास ही रखती है, कारण क्योंकि नहीं तो क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं कुछ भी मुंह में डाल लेगा, वो कहीं भी सॉकेट की उंगली देखेगा, ये तो मेरी उंगली के हिसाब से बनाए शायद मेरे को उंगली डालने के लिए, तो वहां उंगली डालने की कोशिश करता है वो, तो माँ खींचती है उसको, उसको मालूम है ये, उसको लग रहा है कि ये मैं कुछ नया चीज है, कुछ प्राप्त कर लूं, कुछ उठा लूं, लेकिन माता पिता जानते हैं कि इसका भला इसमें नहीं है, है ना, कहीं आग में हाथ डालेगा, कहीं करंट में हाथ डालेगा, तो इस प्रकार कुछ भी मुंह में डाल लेगा, लेकिन माता पिता चाहते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हमें देखते हैं जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान हमें अपना समझते हैं, कितनी मेहनत करके कितनी मुश्किलों से ये जीवात्मा, पहले तो जिसके पास शरीर भी नहीं रहा होगा, फिर जब शरीर दिया होगा भगवान ने, तो कितनी प्रकार की योनि से भटकता हुआ, किस किस युग में क्या क्या किया होगा, अब उसको मनुष्य देह प्राप्त हुआ, उसमें भी नाना प्रकार के सिद्धांतों को पढ़े होंगे, कहीं कहीं कोई रिचुअल किए होंगे, अब जाकर वो वैष्णवों के बीच में आया है, तो इतनी मुश्किल से आने के बाद भगवान उसको एकदम वो नहीं करेंगे। इसलिए चाहते हैं कि ये व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है और इसकी कुछ कामनाएं भी हैं तो भगवान उसको क्या करते हैं, इस प्रकार पूरा करते हैं जिससे कि उसकी भक्ति नष्ट ना हो। इस भौतिक जगत में 5 तत्वों से बने हुए हर चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान के नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान के जो जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब क्या है, दिव्य धरातल की है, इस ब्रह्मांड से ऊपर की चीजें हैं जिसे आध्यात्मिक कहते हैं। इसलिए जब कभी जीव, इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है अपरिवर्तनीय है ना, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, काट नहीं सकते, इस प्रकार की जो उसकी क्वालिटीज बताई हैं, क्यों बताई हैं इस तरह की क्वालिटीज, क्योंकि वो ये सारी क्वालिटीज ये बताती हैं कि इस संसार का कुछ भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, कोई भी चीज को इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक जगत की। उसी तरह भगवान के नाम भी दिव्य हैं। और जब कोई व्यक्ति इस संसार में अपना शरीर का त्याग करता है तो आत्मा का कुछ नहीं होता, हमें मालूम पढ़ लिया हमने, वो बस फिर से देह बदलती है। लेकिन उसी प्रकार जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में भगवान के नामों को उच्चारण करता है तो उसका जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है जो नाश नहीं होता कभी, इसलिए भगवत उसमें आदि पुराण में भगवान कहते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति मेरा नाम लेता हो ले वो मुझे भूल जाए, हो सकता है एक समय के बाद, मैं उसको नहीं भूलता क्योंकि मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति ने इतना समय मुझ में लगाया, मेरी सेवा में लगाया है या मेरा नाम लिया है, तो वो क्योंकि नाश नहीं होती कभी चीज, उसी के आधार पर व्यक्ति को उसकी क्या होती है, उन्नति होती है या उसको शरीर प्राप्त होता है। तो ये दिव्य चीजें कभी समाप्त नहीं होती हमारे बैंक अकाउंट से, जितना हमने इसके अंदर निवेश कर दिया ये समाप्त नहीं होगा। तो इसी के आधार पर हम लोगों को आगे उन्नति प्राप्त होगी। तो जिन लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार का देह प्राप्त हो गया, फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त हो गई, केवल वही लोग इस देह का सदुपयोग कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर कर, एक एक अंग का दर्शन करते हुए, फिर भगवान की स्तुतियां कर कर मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान जो है बता रहे हैं कि उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो भगवान को इस प्रकार पूजेगा। परपट में जो है श्रील प्रभुपाद जी कुछ लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं लोगों को कि देखिए जिस भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं वो पूर्ण तो हैं लेकिन पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण हैं। दूसरी भाषा में बोला नहीं है ऐसा, इससे पिछले श्लोक में भगवान को बताया कि ओम पूर्णवदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात श्री भगवान परम पूर्ण हैं, उनके समस्त उद्गम या उनका व्यवहार जगत अखंड पूर्ण से युक्त है, जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण हैं इसलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्गत होने पर भी वह पूर्ण रहते हैं। समझ पा रहे हैं? भगवान इस प्रकार परम पूर्ण है कि उनसे जो चीज बनाई गई है वो भी पूर्ण है, उसमें कहीं फॉल्ट नहीं है। जीवात्माओं को भी बनाया तो जीवात्माएं भी, आत्माएं जो है वो भी पूर्ण है, वही क्वालिटीज हैं जो भगवान चाहते थे, जिस प्रकार चाहते थे। कोई कह सकता नहीं प्रभु जी पूर्ण कैसे, सूर्य उगता है फिर रात को अस्त हो जाते हैं, या ये सृष्टि बनती है फिर नाश हो जाती है कि नहीं, तो पूर्ण तो नहीं है। लेकिन अगर भगवान ने किसी चीज को इतना चलाने के लिए बनाया तो उस दृष्टि से तो पूर्ण है ना, वो है कि नहीं। भाई माचिस की डब्बी है दो तरह की, एक बड़ी आती है छोटी आती है। अभी छोटी इसलिए बनाई ताकि व्यक्ति कहीं पर भी रख के जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर ले, हर जगह बड़े बॉक्स में ले जाने की आवश्यकता नहीं, पर तो अपने आप में वो पूर्ण है कि नहीं, पूर्ण है। तो इसी प्रकार जो सृष्टि भी बनाई, जो हमें हो सकता है कि लगे कि अरे ये तो मिथ्या है, नहीं ये भी पूर्ण है। हर वो क्रिएशन भगवान के द्वारा बनाई गई वो सब पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। और अगर कहीं इसके अंदर इस सृष्टि में कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं जो हो सकता है कि हमें लगे क्या कि ये कुछ गड़बड़ होगी इस सृष्टि में, तो वो पहला कारण तो ये कि अगर वो चेंजेस आए भी हैं तो वो शायद हमारी वजह से ही आए हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं इस प्रकार की चीजों को निजात कर चुके हैं जो हमारे नुकसान करती हैं। और दूसरा होता है कि कुछ भी चीज जहां घटती है तो भगवान की इच्छा से ही घटती है, तो वो फिर भी पूर्ण है कि नहीं। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं पट में, इस श्लोक में कुछ भगवान ने बताया कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री भगवान छह प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण होने के साथ साथ अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जो छह ऐश्वर्य बताए हैं पराशर मुनि जी ने, ये छह ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण मात्रा में है, इसलिए उनकी परिभाषा दी कि ये पूर्ण है। लेकिन इसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं परम दयालु भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो भगवान के अंदर हर गुण असीमित मात्रा में ही है, लेकिन फिर भी उन सारे गुणों को जो है इन छह गुणों में बताकर क्या कहा कि ये पूर्णता की वह है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन बताने छह प्रकार के ऐश्वर्यों के होने के साथ साथ भक्तों पर अत्यंत दयालु। भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कि भैया मैं हर व्यक्ति के प्रति क्या हूं, संभाव हूं, ना द्वेष्टति, मैं किसी ना द्वेष करता हूं ना ही किसी से विशेष वो है। लेकिन फिर भी भगवान अपने उन भक्तों से जो कि भगवान की अहेतु की कृपा के कारण, भगवान की ही अहेतु के कारण, कृपा के कारण निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करने में रहते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने उन बच्चों से ज्यादा लगाव या प्यार करते हैं जो उनका हर कहना मानता है या उनके कहने अनुसार चलता है, अपेक्षा उसकी जो व्यक्ति हर काम अपनी मर्जी से करता है और जो माता पिता कहें उसका उल्टा करता है। हो सकता है लगाव उससे भी, लेकिन उसको भी सूर्य की रोशनी मिलेगी, उसको भी हवा मिलेगी, उसको भी पानी मिलेगा, खाने के लिए योजना उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। कर्मों के आधार पर भगवान उसको सब कुछ सैंक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो पूरा पिछले जन्म में कर्म कर आया है तो अच्छे कर्म करके आया, गलत करने शुरू कर दिए तो भगवान जो है उसके अच्छे कर्म बंद कर दे, यार तू गंदा हो गया इसलिए अब तक को नहीं दूंगा, नहीं, उसके द्वारा किए गए हर चीज को अवेलेबल करा। लेकिन भगवान जो है भक्तों के प्रति कुछ ज्यादा ही क्या रहते हैं, दयालु रहते हैं। इसीलिए परित्राणायाम साधुनाम विनाशाय च दुष्टः, दुष्टों को मारने के लिए, अच्छा उनके मारने में भी भला है, भगवान के अपने भक्तों को तंग करने वालों को पीटने में भी पीटने वालों का भला है। क्या भला है कि उनको भी गति प्राप्त हो जाती है, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ये उन योगियों से अच्छे हैं जो कई कई सालों से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उस सेंस में देखे तो, क्योंकि जिन्हें भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने अपने हाथों से मारा और भगवान के धाम चले गए। लेकिन उनके लिए जो लोग फेवरेबल कंडीशन में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की इच्छा अनुसार भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स हैं भगवान के पास और उसके बेसिस पर भगवान उनको आध्यात्मिक उन्नति करवाकर अपने धाम में बुलाते हैं। तो यहां पर कुछ लीलाएं भगवान सुशीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उन लीलाओं में क्या है कि भगवान वैसे पूर्ण हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो एक कमरे में बैठे हुए भी आनंद में रह सकते हैं क्योंकि सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी अहेतु की कृपा कैसे करते हैं कि नहीं नहीं अकेले भी खुश हो सकता हूं लेकिन मुझे फिर भी लीलाएं करनी, क्यों करूंगा लीला, लीला करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए साथ में। तो जो दूसरा व्यक्ति है जब भगवान उनके साथ लीलाएं करेंगे तो उन्हें परम सुख का अनुभव होगा इसलिए, और भगवान को भी परम सुख मिलेगा इसलिए। तो आध्यात्मिक जगत में लीलाएं चल रही हैं, हर समय लीला चल रही है, आज तक रुकी नहीं वो लीलाएं, क्यों, क्योंकि वहां की सृष्टि का कभी प्रलय नहीं होता, प्रलय तो इस सृष्टि का होता है, लेकिन इस सृष्टि में भी भगवान लीला करने आते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि यहां की जीवात्माएं भी भगवान के पास आएं और उन लीलाओं को यहां पर करते हैं जो लीलाएं ऊपर नहीं कर सकते। तो इसलिए बाल लीला यहां होती हैं, असुरों का वध यहां होता है, और अपने आध्यात्मिक जगत उस गोलोक वृंदावन जो कि कमल के सदृश है, उसी कर्णिका में जो गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पर अपने अनंत कोटि गोप गोपियों के साथ जो हर समय घिरे हुए हैं, उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं, वो कृष्ण जो कि बता तो नहीं सकते कितना योजन, लेकिन करोड़ों योजन दूर जगत है जो, वहां पर स्थित होते हुए भी इस भौतिक जगत में हजारों लाखों करोड़ों जीवात्माओं के मध्य में उस जीवात्मा का भी विशेष ध्यान रखते हैं जो अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करता है, ये भगवान की भगवत्ता है, इतने दयालु हैं। जब जब उस पर संकट आता है तो उसकी रक्षा करते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान के लिए भी भगवान उसके स्वप्न में आके, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कभी भगवान को इस प्रकार की लीला करनी होती है तो क्या करते हैं, यद्यपि भगवान स्वयं में पूर्ण है तो भी वे अपने भक्तों द्वारा पत्र पुष्प फल तोयम अर्पित किए जाने से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए बैठे कहां हैं, और एक भक्त बड़ी भाव के साथ प्रेम पूर्वक पत्ता पुष्प फल और जल भगवान को अर्पित करता है यहां पर या अपने घर पर भगवान की डिटीज को, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं और उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक स्टोरी याद आ गई, पुराणों की सच्ची कहानी है। एक चोर, जो चोरी करता तभी चोर है, तो चोरी के धन से वो अपने परिवार का पालन करता था। लेकिन कुछ समय तक जब हर घर में चोरी ढंग से नहीं कर पाया, कुछ मिला नहीं उसको, तो घर वाले भी परेशान, भूखों मरने लगा। उसने कहा भगवान कुछ करो। देखिए चोर भी भगवान से प्रार्थना करता है। हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी मीट शॉप होती है, वहां पर भी फोटो लगाई होती है, वो भी दूब आरती करता है, भगवान आज ज्यादा से ज्यादा काटूं और ज्यादा से ज्यादा बिके। हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ श्रद्धा लिए घूम रहे हैं। यहां तक कि देखिए ना, सब व्यक्ति अगर कोई वैश्यवृत्ति कर रहा है तो वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं कि हे भगवान कोई आए, समझ रहे। दुकानदार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ग्राहक मेरा भगवान है, भगवान दो चार तो भेजो आज ना, चाकू पर धार लगा के बोलते। तो हर व्यक्ति जो है इस प्रकार की वो कर रहा है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के द्वारा अर्पित, सॉरी हम बता रहे थे कुछ चोर के बारे में। तो ये चोर जो है उसने कहा भगवान कुछ तो करो, फंस रहे हूं। तो उसने कहा ठीक है मैं अब जाता हूं करने चोरी। तो गया लंबे दूर तक गया और क्या देखता है, कुछ नहीं मिला, थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक वहां पर कुछ भक्त लोग आ रहे थे जो कि किसी तीर्थ स्थान से आ रहे थे, और वहां पर जाकर वो भी बैठ गए पेड़ के पीछे और बातें करने लगे। कमाल हो गया जी, आज तो खुले दर्शन हुए, इतना सुंदर मंदिर, इतना बढ़िया मंदिर, क्या भगवान ने सुंदर आभूषण पहने थे, गले में जो है हीरे जड़ित कुंडल था, कानों के कुंडल तो ओहो दूर से चमक रहे थे, माथे पर जो मुकुट था ओहो पूछो ही मत, एक एक चीज का वर्णन कर रहे थे। उस चोर की तो लॉटरी लग गई, कहते भैया कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरा सुना, उसके बाद में कहा भाई साहब ये कहाँ पर है, ये कौन सा मंदिर है, कहाँ की बात कर रहे हो। उन्होंने बोला ये है कृष्ण का मंदिर, बहुत सुंदर श्रृंगार, आहा देखते ही लगा कि कमाल हो गया। उसने एड्रेस लिया 44/41/77 कहते मैं जाऊंगा इधर। तो वो जो है कहते भगवान अब बुरी बुरी हालत होगी, मैं चोरी करने आ रहा हूँ, आप ही के द्वार आ रहा हूँ आज। वो चल पड़ा, अब चोरी करने जा रहा, जैसे फिल्मों में दिखाता है कुछ व्यक्ति जब गड़बड़ करता है क्या होता है, बिजली कड़कने लगती है, बरसात आने लगती है। तो वो आई और इस प्रकार के जब प्रकोप दिखे तो उसको लगा नहीं, पूरी दृढ़ता थी मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, अब चोरी करके रहूंगा, तो भगवान के मंदिर में चला गया चोरी करने। रास्ते में बरसात, धूप धूल कीचड़ खूब, और कीचड़ से निकलता निकलता पूरे पैर कीचड़ में संगे और उस मंदिर पहुंचा। मंदिर देखा बड़ा सुंदर, बहुत भव्य मंदिर, बाहर से देखा सुंदर गेट बना है, दरवाजा बना है, गार्ड्स भी नहीं है। अंदर आया क्या देखता है, अरे अंदर घुसते उसने देखा एक लेफ्ट साइड में एक टाइल टूटी पड़ी है, अपनी जगह से हिली पड़ी है। आपने देखा कभी, कमाल इतने समय से आ रहे हैं आप, जब आप अंदर आओ पहला कदम ऊपर, हाँ देखे ना आपने, फिर क्यों वैसे बोल, इसी मंदिर की बात कर रहे। तो वो आया उसने देखा एक टाइल हिली पड़ी है, कहता कमाल इतना सुंदर मंदिर, ये पत्थर हिला हुआ है, किसी की नजर नहीं पड़ी क्या। तो उसने क्या करा, अपने पैरों से सारी कीचड़ निकाली दोनों पैरों से, उस टाइल पर लगाई और जहां का पत्थर था वो उसी लगा जगह पे फिक्स कर दिया, साफ कर दिया, चलो ठीक है, कदम बिहारी पू का काम मैंने आसान कर दिया। अंदर आया कोई नहीं था, ऊपर चढ़कर दरवाजा खोल दिया उसने। उस दिन पुजारी लोग अंदर से बंद करना भूल गए थे, जैसे दर्शन किया तुरंत प्रणाम किया भगवान को, जय हो जय हो जय हो जय हो, प्रणाम किया, हे भगवान माफ करना। फिर आया किस लिए था? वो चोरी के लिए आया था। तो कहता मैं चोरी करनी है, तो क्या करा, धीरे धीरे कान के निकाले, पोटली में रखे, गले का हार निकाला, पैरों के निकाले, सब निकाल लिया, पोटली में बंद किया, अभी जाने वाला था लेकिन फिर रुका, फिर प्रणाम किया भगवान को, भगवान माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना, बड़ा लंबा हाथ मारा लेकिन चल पड़ा। बरसात काफी हुई थी तो दीवार टाप रहा था ऐसे करके, ये थोड़ी बड़ी दीवार थी तो यहां से गिर गया नीचे, अचानक हमारे सोते हुए चौकीदार जाग गए, आपने देखा सोते हुए, तो सोते हुए चौकीदार जाग गए और भागते हुए आए और पकड़ा, अरे ये कौन है, यहां कैसे, क्या है इसके पास, खोलो। तो देखते सारी ज्वेलरी थी किसकी, राधिका रमन जी की, और फिर पकड़ा डंडा और खूब मारा, खूब पिटाई करी उसकी, इतना मारा कि जान से मार दिया, मार दिया उसको। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, भाई कोई चोरी करेगा भगवान के मंदिर, पिटाई तो होगी मार। अचानक जो है यमराज के दूत पहुंच गए वहां पर, सत्य घटना है, खाली मंदिर का एड्रेस चेंज है। यम के दूत पहुंचे और उसको पकड़कर कहां ले जाने लगे, कहां, भगवदम यम लोग खींच कर उसको उधर ले जाने लगे। अभी पकड़ ही रहे थे कि उसी टाइम कहां कौन आ गया, टेंपल कमांड नहीं, कौन, विष्णु दूत पहुंच गए और विष्णु दूतों ने कहा आप इसे नहीं ले जा सकते। ऐसी घटना पहले सुनी आपने अजामिल की कथा में, सुनिए ना, इसी तरह विष्णु दूत पहुंच गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इन्हें नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं ले जा सकते, डिपार्टमेंट हमारा जो सामने, जिंदगी भर से पाप किए हैं, कहां जाएगा, नरक ही तो जाएगा। तो उसने बोला कि विष्णु दूत ने कहा देखो आज ये भगवान के मंदिर में आया था, इसने भगवान को प्रणाम किया, तो जिन पापों की आप बात कर रहे हो वो पाप सारे समाप्त हो गए, भगवान को प्रणाम करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, तो इसके भी हो गए, इसी बार एक बार प्रणाम कर डालो सब जल्दी, जय हो। फिर कहते कि इसने, यमदूतों ने कहा कि इसने चोरी की है सब, भगवान के मंदिर में चोरी की है, ये तो जघन्य अपराध है, अब तो नरक ही जाएगा। कहते इसने चोरी की है हम मानते हैं, चोरी करने के बाद सामान इकट्ठा करने के बाद भी इसने भगवान को प्रणाम किया था और माफी मांगी थी, इसने से चोरी का पाप भी भगवान ने माफ कर दिया। कहते हैं इतना ही नहीं, तुम कह रहे हो नर्क, तुम्हें पता है जब ये व्यक्ति ने मंदिर में एंटर किया तो क्या किया, कहते क्या किया, कहते इस व्यक्ति ने अपने पैरों पर लगे हुए कीचड़ को निकालकर एक टाइल पर लगाकर मंदिर का टूटा हुआ पत्थर वापस वहीं जोड़ दिया, और इस काम को भगवान ने जब देखा तो भगवान ने क्या किया, इसको एक बहुत बड़ा ही भक्ति का अंग मानकर मंदिर निर्माण मान लिया और वैकुंठ में इसके लिए घर बना दिया, इसलिए ये आपके यहां ना रहकर भगवान के धाम जाएगा। सत्य घटना है। तो भगवान भक्तों की छोटी सी छोटी सेवा को भी अगर सही चेतना की गई है, सही भाव के साथ की गई है तो एक्सेप्ट करते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम, जब कोई पत्ता पुष्प फल इत्यादि भी भगवान को ऑफर करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं और बैठे कहां हैं, आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन धाम में। प्रभुपाद जी कहा करते थे यहां जो विग्रह है ये ठीक उसके समान है, कैसे, जैसे पोस्ट बॉक्स होता है, आप किसी को पत्र भेजना चाहते हो तो उसमें डालते हो वहां पहुंच जाता है, उसी तरह भगवान इन विग्रहों के रूप में, अर्च विग्रहों के रूप में यहां पर अपने को प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, ताकि हम उनकी ऑफरिंग्स, अपनी जो ऑफरिंग्स हैं वो दे सकें, हम जो लेकर आए हैं वो ऑफर कर सकें, हम जो सेवा करते हैं वो ऑफर कर सकें, ताकि भगवान इसको स्वीकार करें और हमारे लिए आध्यात्मिक जगत में घर बनाए। और भगवान कह रहे हैं कि कई बार भगवान अपने भक्तों के साथ इसी प्रकार की सुंदर लीलाओं को अंजाम देते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी भगवान अपने भक्त से भोजन मांगते हैं, भैया मुझे भूख लगी है, स्वप्न में आके बोलेंगे भोजन दो, या कौन सी लीलाएं में भगवान ने भोजन मांगा? हाँ जी, खीर चोर में चोरी की थी, खाते तो रोज ही थे वो। सनातन गोस्वामी जी जब उनको चीज ऑफर करते थे, कहते थोड़ा नमक डाल दो, कहते कमाला नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, कल परांठे मांगोगे, बड़ा मुश्किल है, तो कहते तुम कोई और घर देख लो, है ना। तो कई बार भगवान अपने भक्तों से इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, और कभी कभी भगवान अपने भक्त से भोजन मांगते हैं, जिस प्रकार माता यशोदा से भगवान कृष्ण, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे, यशोदा से मांगते ही थे, इसके अलावा चोरी भी करते थे भगवान। फिर कह रहे हैं कि भगवान कई बार भक्तों को स्वप्न में बता देते थे कि उनका मंदिर या उनका बगीचा जो है जीर्ण हो चुके हैं, तो जिससे वे उनका उपयोग नहीं कर सकते, इस प्रकार वे भक्तों से उनकी मरम्मत करने के लिए कहते थे। कौन सा मंदिर था? जैसे कई बार आपको याद होगा कि एक अकबर जी आए थे जब राधा कुंड में, तो रूप गोस्वामी जी से मिले, जीव गोस्वामी जी से मिले, तो उन्होंने कहा था इस भाग को ठीक करवा दो, तो उनको लगा कि मेरे पास तो बहुत धन है, मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो उस छोटे से टुकड़े को भी कहते हैं ठीक नहीं, पर सारा धन लगता जा रहा था उनको। तो कहने का मतलब क्या कि भगवान भक्तों के हृदय में आकर उनको प्रेरणा देते हैं, स्वप्न के द्वारा प्रेरणा देते हैं। फिर कह रहे हैं कि कभी कभी वे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए जाते हैं। कौन? भगवान के विग्रह। कब? जब औरंगजेब ने अटैक किए वृंदावन इत्यादि जगहों पर, तो कई भक्तों ने विग्रहों को भेज दिया जयपुर में, जहाँ पर हिंदू सरकार थी उस समय, राजा मान सिंह की, जय सिंह की, और कई बार कुछ विग्रहों को क्या किया भक्तों ने, जमीन के नीचे दबा दिए। अभी जमीन के नीचे दबाकर खुद भी भाग गए तो पता नहीं कहाँ दबाएं, जगह भूल गए, भगवान लेटे हैं तो लेटे अंदर, छप्पन भूख खाने वाले, सब कुछ करने वाले जमीन के अंदर है। अभी क्या है, भक्तों को बोलते हैं, क्या किनको बोला? माधवेंद्रपुरी को बोला, और किनको बोला? रूप गोस्वामी जी को बोला, तो राधा गोविंद देव जी निकले। इस प्रकार बताते हैं कि मैं यहां पर काफी समय से दबा हुआ हूं, गर्मी लग रही है, बाहर निकालो, तो भगवान भक्तों के हृदय में आकर इस प्रकार की बात करते हैं। और फिर कभी कभी वे अपने भक्तों से पूरे विश्व में घूमकर अपने यश का उपदेश देने को कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी, है ना, यद्यपि बता रहे कि वो सक्षम है कुछ भी करने के लिए, महाप्रभु भी सक्षम थे कुछ भी करने के लिए, लेकिन फिर भी अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करने के लिए और अपने भक्तों को और मान सम्मान इत्यादि दिलवाने के लिए पूरे विश्व भर में इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को जो है उनके ऊपर कृपा करने के लिए इस प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। और ये भी एक लीला है भगवान चैतन्य महाप्रभु की, कि उनकी प्रेडिक्शन हुई, उन्होंने कहा कि पृथ्वी ते याचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बमोरना, पूरी पृथ्वी पर मेरा नाम का प्रचार होगा। तो उस प्रचार कार्य में अब कौन कौन लोग सहयोग करने, देखिए षट गोस्वामी वृंद, उन्होंने वृंदावन की लीलाएं ढूंढी, कहां कहां पर है ना, लीला स्थलियों को ढूंढा, फिर बड़े सारे ग्रंथों की रचना करी। ठीक है, अभी प्रिडिक्शन पूरी हो रही है ना, बोल दिया गया ऐसा होगा, तो उनके जो डिसाइपल्स है उन्होंने काम शुरू कर दिया, उसको और आगे बढ़े, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी जो है कई ग्रंथों की रचना करी, है ना, षट गोस्वामी ने मंदिरों का निर्माण किया जहां पर लोग आके फिर भक्ति करना शुरू किया, तो लीला पूरी हो रही है। कौन सी? कि हर जगह सब कुछ होगा। उसी प्रकार रूपा जी आए, रूपा जी ने 108 और अब लगभग 600 मंदिरों का निर्माण हुआ, तो जहां जहां पर लोग जुड़ रहे हैं उसी भविष्यवाणी के अंतर्गत वो लीला भी समाप्त नहीं हुई है। तो 10,000 सालों तक सभी के सभी लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और एक प्रमाणिक गुरु परंपरा संप्रदाय में आकर दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सब लोग उसी लीला के एक भाग है, अंश है। ठीक है ना, तो ये है अहेतु की कृपा हम लोगों के ऊपर। तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, और जिस प्रकार राज शुभदेव को समझ बताया कि सभी स्त्रियों को ये सब करना चाहिए, तो हमारे इस संस्था में शिला प्रभुपाद जी ने जो हमें पंचांग भक्ति का नियम दिया मॉर्निंग में, तो उसको करते हुए ये सारे नियम जो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि हर स्त्री को एक साल वो करना चाहिए मनवांछित इच्छा के लिए, लेकिन इस संस्था में आने के बाद हर वो स्त्री हर वो पुरुष ये सारे काम कर रहा है, और एक साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। जब भक्तों के टच में आ जाते हैं तो हर व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, कितने लोग मंगला आरती इत्यादि करते हैं, कई लोग घर में मंगला आरती करते हैं, तो मंगला आरती ऐसे नहीं उठ के सीधा शुरू कर दिया, नहीं, वो ब्रश भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, नहाते भी हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, उसके बाद भगवान को स्तुतियां करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनका सारा कार्यक्रम पूरा जो है करते हैं, उसके बाद भागवत अध्ययन करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, सारी आरतियां करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। तो इस प्रकार इसमें जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के लिए कुछ विशेष मंत्र भी दोहराते हैं, वैष्णव भजन भी दोहराते हैं, और ये हरे कृष्ण महामंत्र भी दोहराते हैं, जो कि अपने आप में भगवान की सबसे बड़ी स्तुति है, भगवान का सबसे बड़ा गुणगान है। तो इसलिए इस श्लोक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हम लोग कुछ अलग से अनुष्ठान का ना सोचें, अपना मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा कर लें, वही बेस्ट है। बोलिए हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की ताय गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न हो तो अलग से आके पूछ सकते हैं, समय अधिक हो चुका। हरे कृष्ण।